केसी घाट, और जैसे इमली तला है, और प्रभु जी ऐसे लीला स्थली के बारे में आपको वर्णन करेंगे और बहुत ही मधुर आस्वादन कराएंगे। आप जरा जी प्रभु जी कुछ पूछ।
श्याम कुंड और राधा कुंड का जो आपने कथा बताई, बांसी गंगा की कथा भी उसी प्रकार थी। वो भी वैसे मन से तभी उत्पन्न हुई थी जब भगवान कृष्ण
वो
को
वृत्रासुर राक्षस के साथ था या अरिष्टासुर राक्षस के साथ था?
दोनों ही गाय योनि वाले थे।
गाय योनि वाले थे।
ये राधा रमन की किसकी डिटी से? राधा रमन
राधा रमन
गोपाल
गोपाल
भट्ट
भट्ट
गोस्वामी
के
थे।
हरे कृष्णा। तो आप लोग ऑलरेडी बोर हो रहे हैं या फिर आनंद ले रहे हैं? हाँ थक गए बैठे बैठे। हाँ जी माता जी सब भूल जाएंगे तो
सही है,
सुनना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली
नहीं एक्चुअली क्या होता है, हम भी जब पहली बार सुनते थे इसको ऐसे नहीं कि हमने पहली बार सुनी, एक ही बार सुन के हमने याद रख लिया या फिर, तो बार बार सुनना पड़ेगा ये चीज है। तो गोपियां क्या बोल रही हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापन। ये क्या है, कल्मषापन करने के लिए, ये जो कल्मष है कलयुग में क्या है, इसको आपके कथामृत को सुनना पड़ेगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जीवन को तृप्त कर देते हैं। पानी प्यासे को जब पानी मिल जाए, बहुत प्यासा है रेगिस्तान में पानी मिल जाए, उसको क्या होता है, तृप्त कर देता है ना। इसी तरह भक्तों को तृप्त कर देता है।
पानी नहीं आया ना अभी तक।
तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापन श्रवण मंगलम, ये श्रवण करने से क्या होता है, मंगलमय हो जाता है। ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस में सारा चला जाता है। श्रवण मंगल
भगवान की लीला है, थोड़ा सा अच्छे से प्यास लग जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो इसीलिए ये श्रवण मंगल में इनऑस्पिशियस में सारा चला जाता है जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। तो इसीलिए भक्तों से सुनिए जो भी है, और कल को हम यही चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे बैठ के कल को हमें बताएं और सारे भक्तों को बताएं, इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं आपसे ये लीलाएं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कल भी आप यहाँ पे बैठ के हमें सुनाए और साथ में 50 भक्तों को लाए आप सुनाए, ये है। इसीलिए इससे क्या होगा, आपका जीवन भी तृप्त होगा जब आप सुनाएंगे। ये नहीं सुनने वाले से ज्यादा आपसे ज्यादा बेनिफिट हम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय का जो धूल है, जो मैल है, वो ज्यादा हट रहा है, इसीलिए हम ज्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेनिफिटेड हो रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम ज्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं, हम ज्यादा बेनिफिटेड होने, तो ये सुनिए एक बार नहीं तो मतलब 10 बार सुनेंगे तो याद रह जाएगा पूरा लीलाएं। तो इसीलिए सुनते रहिए, एक बार नहीं 10 बार सुनिए, फिर लीलाएं जब याद रह जाएगा फिर आप सुनाइए, यही तो।
हरे कृष्णा। तो आप फिर से काफी लोग तो जो है वो भाग गए है ना, भाग गए, सो रहे हैं, सुभद्रा सो रहे। देखिए भगवान ने ना दोनों चीजों का बाजार लगाया है, एक है नाम और हरि नाम और हरि कथा का बाजार, और एक है भौतिक वस्तुओं का बाजार। तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने जीवन में कौन से बाजार से वस्तु खरीदना चाहते हैं। सबसे पूछा भी गया था कि जो रहना चाहते हैं फिर भी लोग चले गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रभु जी के साथ आए तो हमारा सारा प्रोग्राम खराब हो गया, इसकी महत्वता नहीं समझते हैं, है ना। ये नेक्टर ड्रॉप्स हाँ,
श्रवण को कार्य करने
हाँ,
अगर वो आंख और जीवा बंद है
हाँ,
तो वो दिमाग का वो हिस्सा डाउन होता जा रहा है
इसी के कारण से लोग नहीं, नींद के कारण नहीं, जो लोग चले गए हैं वो उसमें क्या होता है कि ना हम भोग करना चाहते हैं। दो प्रकार का भोग बताया गया है, एक है सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, इंद्रिय तृप्ति, और एक है स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति। अपने जीवन को हमने अध्यात्म का पर्दा तो ओढ़ लिया, लेकिन अभी भी हम क्या करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ कह रहे थे कल कि हम ऑटो से परिक्रमा कर लेंगे, पर करेंगे करेंगे करके ही रहेंगे। तो हमें समझना ये चाहिए कि भगवान की जो कथा है, वासुदेवम कथा रुचि है ना, इसकी जो श्रद्धा, सुश्रम अश्रद्धा नाम वासुदेवम कथा रुचि, भागवतम कहती है कि हमको वासुदेव की कथा में अगर रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो वो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है ना। अब कथा ना करके हम क्या करें, इंद्रिय तृप्ति करें, दैट बिकम्स, फिर वो कहेंगे तो इंद्रिय तृप्ति नहीं, हम तो परिक्रमा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इवन हम लोगों को जैसे बताया जा रहा है, प्रभु जी ने भी बताया कि भक्तों के संग में वृंदावन धाम और गोवर्धन और अन्य लीला स्थलियां जाना चाहिए। इसका कारण विशेष यही है कि कहीं हम अपनी आंखों के द्वारा सोचें तो हमने आध्यात्मिक कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन करें क्या, स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। तो इसलिए क्या है कि बोलने के बाद भी जो नहीं सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हम उसी चीज को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन क्या है कि आने वाले समय में दे विल नॉट बी बेनिफिटेड। जो व्यक्ति डिसाइपल होता है ना, उसका मतलब होता है डिसिप्लिन। वन हु इज डिसिप्लिन ही बिकम अ डिसाइपल। श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने अभी आपको, 6 hours ही वॉज लिस्निंग कॉन्टिन्यूसली दी कथा और सारे के सारे लोग उठ के चले गए थे। तो कौन आज विश्व को बदला, आप कितने लोगों को जानते हैं जो उनके भक्ति सिद्धांत महाराज के डिसाइपल थे, कितने लोगों को जानते हैं, ओनली वन प्रभुपाद। वाई, बिकॉज ही हैज ए टेस्ट फॉर वासुदेवम कथा रुचि, भगवान की कथा सुनने में उनको रुचि थी। और देखिए क्या है कि अगर हम कथा सुने और उसके साथ में हमको क्या, उसका पालन भी करना है अपने जीवन में। जैसे हमारे घर में कोई काम करने वाला नौकर होता है ना, उसको बोलते हैं रामू जरा पानी लाना, अब उसका क्या कर्तव्य बनता है, पानी लेकर आए, नहीं आए तो कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे गर्म लाऊं या ठंडा लाऊं। अगर उसने नहीं सुना तो हम क्या बोलेंगे, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता, क्या बोला, पानी लेके आओ। तो उसी प्रकार से बार बार वही चीज सुनने के बाद में अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है उस चीज को कि प्लीज बी इन द ग्रुप, प्लीज बी डिसिप्लिन, नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने वो इंस्ट्रक्शन सुना ही नहीं है। इधर ही आज कि चले जाएं या ना चले जाएं, विदाउट टेलिंग द अथॉरिटी, जो भी यहाँ पर आपके ग्रुप लीडर्स हैं, अगर आप उनको बिना बताए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि यू डोंट वॉन्ट टू बी अंडर द अथॉरिटी। आप समझते हैं वी आर द मैच्योर्ड पीपल, वी नो एवरीथिंग, और यही हमारी गलती है। हम चाहे 100 वर्ष के भी हो जाएं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है, अभी हम अध्यात्म में बहुत छोटे हैं, है ना, इसीलिए कृष्ण प्रेम नहीं बरस रहा है हमारे ऊपर, इसीलिए स्ट्रेस है, टेंशन है हमारी लाइफ में। आज देखिए कितना अच्छा दिन है, आज के दिन श्रील प्रभुपाद ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन इन न्यूयॉर्क, आज के दिन ही इस्कॉन फॉर्म हुआ था। पहला दिन जब 1966 में इस्कॉन बनाया, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन आज के दिन किया गया। आज इतने शुभ दिन पे प्रभुपाद जी के, हमको प्रभुपाद के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और इतनी सुंदर सुंदर स्थली हमने आपके लिए ढूंढी है, जैसे कल कुसुम सरोवर, आज ये केशी घाट, तो हमको सुनना चाहिए इसके बारे में। प्रभुपाद बोलते हैं वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, दिस इज अ कॉन्शियसनेस, है ना। वृंदावन को अगर हम प्लेस समझें कि यहाँ पर चलो शॉपिंग है, ये है, प्रेड़ा है, जो भी हम खाना पीना है, ये सब है, ये सब तो बाहर भी है, दिल्ली में भी ब्रिजवासी की हजारों दुकानें हैं, पेड़ा वहां से खरीदो दे दो कि बोलो जी पेड़ा आ गया आपका, है ना। उनको थोड़ी पता है ये वृंदावन में, उसमें क्या हाथ में लिखा है, पेड़े के अंदर स्टैंप लगा है कि ये वृंदावन का है, लेकिन क्या चीज है वृंदावन, इज अ कॉन्शियसनेस। आर यू कॉन्शियस ऑफ बीइंग इन वृंदावन? इफ यू आर नॉट, देन इट इज ऑफ नो यूज कमिंग वृंदावन, एक्सपेंसेस, साथ में इतना थकान, और वापस जाकर 2 दिन तक थकान रहेगी कि हम वृंदावनों का है, इफ योर कॉन्शियसनेस डजंट गेट चेंज। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस ऑफ बीइंग इन वृंदावन। तो जितने लोग चले गए, इट मींस दे आर नॉट बीइंग बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ वृंदावन। वृंदावन में आध्यात्मिक कथा रुचि का आनंद लेने की इच्छा नहीं है। तो हम थोड़ी सी कथा का चर्चा करेंगे कि भगवान का जो जन्म है वो अभी आने वाले समय 18 अगस्त को जन्माष्टमी हम बनाएंगे। तो भगवान का जब जन्म होता है तो हम क्या गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद हो रहा है भगवान जो आज सुबह महाराज कथा कर रहे थे, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, महाराज बताते हैं कि जो पूरा का पूरा भगवान का शरीर है वो सत चित और आनंद से बना हुआ है ना। सत मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और चित मतलब सत मतलब एटर्नल, एंड चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस, फुलफुल। तो जो आनंद है उसकी अगर हम पूरी परिकाष्ठा पूरा शरीर बना लें तो भगवान आनंद के बने हुए, उनका एक अंश भी कथा के रूप में अगर हमारे कानों में गिर रहा है, इसका मतलब ये क्या गिर रहा है, भगवान के सचित आनंद स्वरूप से हमारे कानों में आनंद गिर रहा है। तो भगवान का जब जन्म होता है तो वो कहाँ होता है, मथुरा में, और फिर उसी रात को जो माता जी ने कल प्रश्न पूछा था, सेम टाइम पर उनके जन्म होने से पहले जो है 6 भाई बहन उनके मारे जा चुके थे, है ना, 7वें बलराम जी और साथ ही साथ में योग माया भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि जब देवकी और वसुदेव की शादी होती है, विवाह होता है। तो उसके बाद में कंस जब अपनी बहन की विदाई कर रहे होते हैं तो उस समय एक आकाशवाणी होती है, क्या कि देवकी का आठवां पुत्र आपका वध करेगी। तो कंस जो है भाई होने के नाते, जिन्होंने बताते हैं कितने करो कितने लाख हाथी घोड़े अपनी बहन की शादी में दिए थे, गिफ्ट किए थे, और वो सारे क्या हुए, फेस्ट हो गए। देखो उन्होंने इतना सब कुछ, इतना प्रेम था कि कितने घोड़े कितने रथ कितनी स्त्रियां दासियां गिफ्ट कर रहे थे। और अब जब आकाशवाणी सुनी कि ये तुम्हारी मृत्यु का कारण है, तुरंत ही बहन के बाल पकड़ लिए कि मैं इसको अभी तलवार से काट देता हूँ। तो देखिए आज हमारा ये रिलेशन जो है ना, हम बोलते हैं पेरेंटल रिलेशन, ब्रदरली रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल रिलेशन इज विद कृष्णा, और उसका 1% है मदर और बेटे का। अदरवाइज अगर हम 100% की बात करें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लव इज नो वेयर इन दिस वर्ल्ड, देयर इज लस्ट और डिमांड्स। अगर जब तक हमारी डिमांड पूरी हो रही है तब तक हमारा प्रेम है, जिस दिन डिमांड पूरी नहीं होगी हमारा कोई प्रेम नहीं है। एंड एग्जाम्पल इज कंसा, है ना। देखते हैं हम अपने जीवन में कितने कंस दिखाई देते हैं। जब तक दोस्त था, जब तक उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, खूब मिलने आता था, एक प्रॉब्लम हो गई तो बस उसके बाद बात करना छोड़ दिया, आप तो मिलता ही नहीं है। ऐसे बहुत दोस्त होंगे आपके भी पुराने लाइफ में, स्कूल टाइमिंग्स के, जो आपके साथ थे, जीना मरना एक साथ, लेकिन आज मालूम नहीं है उनका। दिस हैपन्स बिकॉज कंस की तरह जब तक डिमांड पूरा तब तक तो दोस्ती, अदरवाइज कोई दोस्ती नहीं। तो कंस ने बाल पकड़ लिए देवकी के, बोले मैं अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो वासुदेव जो देवकी के पति हैं, उन्होंने वहां पर प्रवचन किया है, बहुत सुंदर प्रवचन किया कि अगर वो चाहते कि देखो देखो ऐसा मत करो तो उनकी भी गर्दन काट देते, क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं वासुदेव, इसी के कारण भगवान उनके घर में जन्म लेंगे, है ना। ऐसे कोई नॉर्मल घर में भगवान जन्म नहीं लेते हैं। उन्होंने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करी है प्रश्नी और सुत्पा के रूप में। जब भगवान प्रश्नी गर्भा बनकर उनके घर में आते हैं, दिति और कश्यप बनकर उन्होंने जब तपस्या करी तो भगवान वामन बनकर उनके घर में आते हैं, देवकी वासुदेव बनकर भगवान कृष्ण के रूप में उनके घर में स्वयं भगवान आते हैं। तो जब उन्होंने उनके बाल पकड़े तो वासुदेव क्योंकि कृष्ण भक्त हैं तो उनको चतुराई से समझाना आता है। तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि देखो क्या, जब तुम पैदा हुए तो तुम क्या लेके आए, जब तुम अपना जीवन छोड़ोगे तो तुम क्या छोड़ोगे। ये जीवन ये काल इस प्रकार से है कि जब दो कदम चलते हैं तो एक कदम आगे होता है तो दूसरा कदम उठ जाता है। तो पीछे वाला कदम क्या कहता है कि देखो आगे वाला कितना आगे निकल गया, और आगे वाला अहंकार में होता है कि देखो पीछे वाला कितना पीछे रह गया। लेकिन समय कहता है जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद स्थिति बदलने वाली है, मैं आगे होऊंगा और तुम पीछे हो गए। इसी तरह से पत्ते बदलते हैं, एक कीड़ा एक पत्ते को खाता रहता है, और जैसे वो खाना खत्म होता है वो दूसरे पत्ते पे चला जाता है और पुराना पत्ता छोड़ देता है। ऐसे ही हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जब इस प्रकार का प्रवचन हुआ तो कंस थोड़े शांत हो गए। जब शांत हुए तो उन्होंने बोला कि लेकिन अभी जो आकाशवाणी हुई ये तो सच्ची है। उन्होंने कहा आठवां पुत्र, ये तो नहीं कहा कि पहला पुत्र, तो जब आठवां होगा तुम आठवां तुम्हें दे देंगे, आठवें पुत्र को तुम मार डालना, तब तक हमें जीने दो। तो कंस को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये बात तो सच बोल रहे हैं, मैं क्यों, आठवीं संतान जो है तो आठवीं संतान मारेगी, तो क्या दिक्कत है, फिर तो मैं 7 संतानों को छोड़ सकता हूँ, मामा हूँ तो छोड़ देता हूँ। बोले ठीक है। देवकी और वासुदेव को एक ही कारागार में बंद कर दिया गया, बेड़ियां डाल दी गई और फिर बंद कर दिया। आज भी वो जन्म स्थान है, आप जाएं तो वहां पर ब्लड स्पॉट्स आपको नजर आते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर। तो जब इस प्रकार से हुआ तो देवकी और वासुदेव वहां रहने लगे, और उन्होंने कहा कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जब भी हमारा बच्चा आएगा। तो जब पहला बच्चा उनके घर में आता है तो फिर कंस को जाकर नारद जी कहते हैं कि देखो उनके घर में हो गया, क्या पता भगवान जो है विष्णु आठवां का एक नंबर कर दें और एक का आठवां कर दें, क्या पता। तो इसलिए सबको खत्म करो, चांस मत लो। क्यों? क्योंकि नारद जी चाहते थे कि कृष्ण का जो यहाँ पर प्रकट है वो जल्द से जल्द हो। तो भगवान के जो भक्त हैं वो वेट नहीं कर सकते, है ना, वो चाहते हैं जल्द से जल्द दर्शन हो। जैसे हम राधा दामोदर में गए तो सारे भक्त भीड़ बना के खड़े हैं, जल्द से जल्द दर्शन हो। सुबह इस्कॉन में थे तो भीड़ बना के खड़े, जल्द से जल्द दर्शन हो। तो ऐसे नारद जी चाहते हैं भगवान जल्द से जल्द पृथ्वी पे प्रकट हो जाए, तो इसलिए वो कहते हैं जल्दी जल्दी पहले वाले खत्म होंगे तो फिर भगवान का प्रकट होगा। तो उन्होंने जाकर ये बोला तो कंस को ये बात भी समझ में आ गई। तो फिर जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, भौतिकवादी, वो जल्दी से आ जाते हैं पकड़ में। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले अपने सामान बेचते हैं 1+1 फ्री, ये नहीं सोचते कि एक का पैसा तो देना पड़ेगा, एक के साथ एक फ्री है, लेकिन एक के अंदर ही दूसरे वाले का पैसा इंक्लूडेड है। तो जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के और जो राक्षस बन उनको मूर्ख भी बना रहे हैं, तो भौतिकवादी पूरे एकदम निचोड़ रहे हैं हम लोगों को और हम निचोड़ते हैं उनके साथ में। तो ये एडवर्टाइजमेंट होता है। तो नारद जी ने एडवर्टाइजमेंट किया और इसी प्रकार से फिर क्या हुआ कि पहला पुत्र के पहले बच्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने आकर कंस ने उठाकर उसको दीवार पे दे मारा। तो फिर इस तरह से उनके 6 बच्चों का वध कर दिया गया। और उसके बाद में जब 7वीं संतान हुई तो पता चला कि उनका गर्भपात हो गया है ना, उनको बच्चा हुआ ही नहीं है। और उसी समय भगवान ने आदेश दिया कि जो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद गांव में थी, उनको क्या, वासुदेव जी जब शादी करने आ रहे थे देवकी के साथ में, तो अपने दोस्त नंद बाबा के पास उनको छोड़ के आए थे। जैसे हम लोग भी करते हैं ना, माता जी ने जैसे अपने बच्चों को किसी के संरक्षण में छोड़ा है, अपने पेरेंट्स को हम किसी के संरक्षण में छोड़ के जाते हैं, तो वासुदेव शादी करने जा रहे हैं तो अपनी वाइफ रोहिणी को नंद बाबा के संरक्षण में छोड़ के गए। तो फिर उनके घर पे किसका प्रकट हुआ, बलराम, क्योंकि भगवान ने योग माया को बोला कि वहां से आकर्षण करो और उनके गर्भ से निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में उनको डालो, क्योंकि उनको आकर्षण कर निकाला गया इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा और बलराम होता है। और फिर 8वें पुत्र के रूप, 8वें संतान के रूप में कृष्ण भगवान को आना था। और सेम टाइम पर यशोदा माई के घर में 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं, आपने कल प्रश्न पूछा था, एक कृष्ण और एक साथ में योग माया, ट्विंस होते हैं ना सेम टाइम पर दोनों। लेकिन कई जगह पर वर्णन मिलता है, कई जगह पर वर्णन नहीं मिलता, जो टीवी सीरियल वाले वो तो नहीं बताते हैं, लेकिन शास्त्र इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि 2 कृष्ण है ना, यशोदा नंदन कृष्ण जो कल भी आपने सुना, और एक है देवकी नंदन कृष्ण। तो जब देवकी नंदन कृष्ण होते हैं उनके घर पे, तो भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं, 4-handed फॉर्म, शंख चक्र कमल गदा लेकर भगवान होते हैं और मुकुट भी पहना हुआ है। तो देवकी मैया कहती है, अरे भाई ये कैसी रूप लिया है आपने, 4 हाथ के रूप में आप प्रकट हो रहे हैं, तो कौन मानेगा बच्चा है, और कोई प्रेम नहीं करेगा, तो आप बच्चे के रूप में आ जाइए। तो भगवान जैसे ही रोना बाल रूप ले लेते हैं और रोने लग जाते हैं, है ना। और जब क्रंदन करते हैं, रोते हैं, तो फिर वो लोग देवकी और वासुदेव के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और एक प्रश्न उठता ये है कि देवकी और वासुदेव के वहां रहने से कृष्ण उत्पन्न हुए, तो क्या ये कामुकता का उदाहरण है कृष्ण की उत्पत्ति? नहीं, बताया जाता है कि भगवान के मस्तिष्क से, है ना, जिससे चिंतन करते हैं कृष्ण का, चिंतन करने से कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं। इसी प्रकार से वासुदेव के हृदय से कृष्ण उनके चिंतन में आए हैं, और चिंतन से देवकी के चिंतन में, देवकी के चिंतन से देवकी के हृदय में, और हृदय से गर्भ में जाते हैं, है ना। तो इसमें कहीं पर भी कोई लेश मात्र भी कामुकता या लेश मात्र भी शारीरिक संबंध का सवाल नहीं है भगवान की। इसलिए भगवान को बोलते हैं अपियरेंस, इसलिए भगवान को बोलते हैं आनंद, इसलिए ये नहीं बोला जाता है कि इनके घर बच्चा हुआ है या कृष्ण की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लर्निंग करने के लिए है हमारे पास। सेम टाइम पर फिर वहाँ योग माया होती है गोकुल के अंदर, और एक और यशोदा नंदन कृष्ण होते हैं। अब वासुदेव जी को भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे तुम कहाँ ले जाओ, गोकुल ले जाओ, है ना। गोकुल ले जाने के लिए बोलते हैं, तो फिर वासुदेव जी कहते हैं मैं कैसे ले जाऊँ, मेरी तो पूरी बेड़ियां लगी हुई हैं। तो वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी योग माया सारी बेड़ियां नष्ट कर देगी, और सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, आपने लीला सुनी हुई है। और फिर उनको अपने सिर पे रख के यमुना को, वाटर को पार करते हैं, लेकिन बताते हैं कि यमुना नदी धीरे 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 बढ़ने लगती है और कल गर्दन तक आ जाती है। क्यों आ रही है, तो ना भगवान के पैरों को छूने के लिए आ रही है, और साथ में ऊपर बारिश हो रही है, तो संकर्षण भगवान जो बलराम है वो शेषनाग का अवतार लेके भगवान को कवर करते हैं ताकि बारिश ना आए, है ना, और भगवान को टच करना चाह रहे हैं, वो भी दर्शन पाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जानने वाली है कि जब वहां जाते हैं वासुदेव जी नंद गोकुल पहुंचते हैं, और नंद बाबा क्या देखते हैं कि एक पुत्री है और एक पुत्र है, तो जो पुत्र है उसको ले जाकर वहां पर जब कृष्ण को लेटाते हैं, तो जो यशोदा नंदन कृष्ण है और जो देवकी नंदन कृष्ण दोनों जुड़ जाते हैं और एक कृष्ण बन जाते हैं, है ना। और जो योग जो लड़की है योग माया, उसको उठाकर वापिस कहां, जेल में ले आते हैं। और जब लाते हैं तो फिर क्या होता है, वापिस बेड़ियां आ जाती हैं, वापिस पहरेदार जाग जाते हैं। तो ये जो पेड़ियों का जो सिस्टम है ना, हमारे एक वर्तमान आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि इसका कारण क्या है। ये जो बेड़ियां हैं, ये तीनों गुणों की बेड़ियां हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं, है ना, तो देखिए क्या होता है कि बेड़ियां खुल जाती हैं, अपने आप हमारे धाम गोकुल के लिए रास्ता खुल जाता है। लेकिन जब कृष्ण हमारे जीवन से चले जाते हैं, वासुदेव के जीवन से, और माया, योग माया, माया जब हमारे जीवन में आती है, तो क्या होता है, फिर से बेड़ियां आ जाती हैं, फिर से रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। तो अब हम अपने जीवन में चूज कर सकते हैं कि हमें बेड़ियां चाहिए या बेड़ियों से मुक्ति चाहिए, है ना। तीनों गुणों की बंधन है, चाहे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण की बेड़ियां जो है वो गोल्डन चेन्स है, रजोगुण की बेड़ियां हैं वो सिल्वर चेन्स है, और तमोगुण की बेड़ियां आयरन चेन से, तो आयरन चेन में तो हम लोग नहीं है जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, इग्नोरेंस में है। और पैशन की जो बेड़ियां हैं सिल्वर चेन्स, वो ऐसी हैं कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, आई एम समथिंग इन दिस लाइफ, जिसके अंदर ये पैशन की बेड़ी है, रजोगुण की बेड़ियां। और रजोगुण और तमोगुण की बेड़ियां कट जाती हैं, लेकिन सत्वगुण की बेड़ी कभी नहीं कटती। कौन सी बेड़ी बेड़ी है वो? हथकड़ी ऐसी है, व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि आई नो मच बेटर देन अदर्स। जब आप डिवोटी बन जाते हैं ना, अब आप अपने भौतिक रिश्तेदारों में बैठेंगे या समाज में बैठेंगे या भक्तों के समाज में बैठेंगे, तो हमारे को क्या आता है, आई एम बेस्ट देन अदर्स। तो ये जो है सत्वगुण की बेड़ी है। और जब ये कटती है कि आई एम लीस्ट, आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दास अनुदास, गोपीर भरते पद कमली और दास दास दासा अनुदास, जिस दिन ये सर्वेंट एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है, उस दिन हमारी सत्वगुण की बेड़ी कटती है। और जब ये बेड़ियां कटती हैं, तब हमारे जीवन में कृष्ण आते हैं और हमें गोकुल धाम के दर्शन होते हैं। अन्यथा हमारे जीवन में न यमुना है, न गोकुल है, कुछ नहीं, सिर्फ माया ही माया है, है ना। और जो वो छह बच्चे उनके पहले मारे गए, हाँ, वो शांतनु के पुत्र थे, लेकिन उसके पीछे लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि देखिए, छह पुत्रों के बाद में सातवें बलराम आते हैं और आठवें नंबर पे कृष्ण आते हैं। तो ये छह पुत्र है, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम मतलब आपकी इच्छाएं, क्रोध मतलब आपका एंगर, लोभ मतलब अटैचमेंट, ग्रीड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, और मद मतलब प्राइड, और मत्सर मतलब जेलसी। जिस व्यक्ति के जीवन में ये छह चीजें रहेंगी, तो फिर उस व्यक्ति के पास कृष्ण कभी नहीं आएंगे। जब ये छह चीजें मर जाती हैं, जब ये छह बच्चे खत्म होते हैं, तब सातवें नंबर पे गुरु आपके जीवन में आते हैं, जो बलराम है। बलराम मतलब गुरु तत्व, जो हमने कल बताया था। जब गुरु आपके जीवन में आएंगे, तब वो गुरु आपको किससे मिलाएंगे? आठवें नंबर के पुत्र से, कृष्ण से मिलाते हैं। तो कृष्ण के और इन काम क्रोध के बीच में कौन है? गुरु है। अगर गुरु नहीं है आपके जीवन में, कोई स्पिरिचुअल काउंसलर नहीं है आपके जीवन में, तो आप कृष्ण से कभी डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो ये जो छह बच्चे हैं, इनको समाप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वो कैसे समाप्त होंगे? चैंटिंग, सर्विस ऑफ डिवोटीज, प्यूरिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, और डाइट और
स्लीप, स्लीप
एसोसिएशन,
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप,
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप,
सेवा,
सेवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्संग, वासुदेवम कथा रुचि। जिस व्यक्ति की वासुदेव कथा में रुचि नहीं है, वो व्यक्ति कितना भी जप करेगा, वो सारा मैकेनिकल होगा, क्योंकि वो प्रेम से नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी जब बोलते थे अपने भक्तों को जप करो, तो सारे के सारे जप करते थे, और हम भी करते हैं। 16 माला काटने में, 8 माला जितने भी लोग करते हैं, उसके लिए व्यक्ति को इतनी टेंशन स्ट्रेस होता है, और प्रभुपाद जी करते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर चैंटिंग बिकॉज यू हैव टू चैंट, एंड आई एम चैंटिंग बिकॉज आई लव चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो दैट डिफरेंस कम्स व्हेन यू हैव वासुदेवम कथा रुचि। जब तक कथा में रुचि उत्पन्न नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए धाम में आए तो धामवास का मतलब ये नहीं है, यहाँ आए और वस्त्र खरीदे, यहाँ सोए, पिकनिक बनाए, फोटो खींचे चले जाए। कथा आकर सुने तो आप देख रहे हैं, जैसे कल भी हमने रात को फीडबैक लिया था, सब लोगों को डिफरेंस फील हो रहा है। जब आप आए और उनकी कथा सुने, तो हमको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो जैसी ये जगह है, इस जगह का नाम है केशी घाट, क्योंकि केशी नाम का एक राक्षस है, तो वो भगवान को मारना चाहता है। तो भगवान जब 3 वर्ष के थे, तो गोकुल से वहां पर बहुत प्रकार प्रकार के राक्षस आने लग गए थे। तो वहां उनके जो पिताजी थे, उन्होंने वहां से क्या किया, यहाँ से चेंज करके चलो, कहाँ चलो, नंदगांव चलो। तो किसी दिन हम लोग ट्रिप लेके जाएंगे नंदगांव। नंदगांव में नंद बाबा का घर है, और आज भी नंद बाबा और यशोदा जी के दर्शन होते हैं, तो वहां हम जा सकते हैं। और फिर बहुत प्रकार के राक्षस आने लग गए मारने के लिए, जैसे प्रभु जी ने बताया अरिष्टासुर, वृत्रासुर, जिसकी कथा हमने कल सुनाई थी। तो ऐसे प्रकार प्रकार के राक्षस जब आते थे, तो एक राक्षस था जिसका नाम था केशी राक्षस, है ना। वो घोड़े के रूप में था, हॉर्स फॉर्म में, है ना। तो बताते हैं कि वो हॉर्स आकर भगवान कृष्ण को, उन्होंने पूछा, कंस ने बुलाया केशी राक्षस को, और बोला क्या कि जाकर कृष्ण का वध कर दो, क्योंकि वो मेरी हथकड़ियों से, बेड़ियों से भाग गया है, और वो छोटा सा बालक, उसने मेरे इतने सारे राक्षसों को मार दिया है। तो भगवान को मारने के लिए वो घोड़ा यहाँ पर आता है, और अपने हाथों से भगवान को कुचलने का प्रयास करता है। भगवान छोटे से बालक हैं, और दोनों हाथ, घोड़े के जो आगे के हाथ होते हैं बहुत पावरफुल हैं, दो पैर जो आगे के हैं, और उनसे वो मारने का प्रयास करता है। तो कृष्ण तो बलवान है, माखन खाते हैं, है ना, और उनके पास ग्वाल बालों का सखाओं का संग है, गोपियों का प्रेम है, तो उन सबके पावर के कारण क्या करते हैं, वो दोनों टांगे पीछे वाली पकड़ लेते हैं, वो आगे की उठाता है तो नीचे से पीछे की पकड़ लेते हैं और उठा के उनको घुमाते हैं, 1000 times चक्कर लगाते हैं और फिर फेंकते हैं कहाँ, यहाँ पर जो एक केशी घाट है, है ना। तो यहाँ पर जब उनको आकर फेंकते हैं तो वो बताया गया है कि जो ये केशी राक्षस है, केशी असुर जो घोड़ा है, ये और कुछ नहीं है, हमारी फॉल्स ईगो है, है ना। फॉल्स ईगो अपने दोनों हाथ उठाकर हमारी तरफ भागती है, है ना, और हमारे को, हमारे कृष्ण प्रेम को मारने का प्रयास करती है, जो हमारी नेचुरल लिविंग एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की जीवेरे स्वरूप हो नित्यर कृष्ण दास, हम कृष्ण दास है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को मारने का प्रयास करती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप, क्योंकि कहते हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, नॉन डिफरेंट, कृष्णाज नेम एंड कृष्णा। तो क्या करना चाहिए, जब इस प्रकार से फॉल्स ईगो हमको मारे तो हमको दोनों हाथ ऊपर करने चाहिए और क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यहाँ पर केसी राक्षस का वध किया है भगवान ने, और फिर भगवान ने यहाँ पर यमुना में स्नान किया है, और ये घाट इसीलिए बनाया गया है, यहाँ पर जो लोग आते हैं, रूप गोस्वामी जिनके बारे में प्रभु जी वर्णन कर रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में भी उनकी आपने समाधि देखी, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस पूरे वृंदावन में सबसे सुंदर कोई जगह है तो वो क्या है, केशी घाट, है ना। क्योंकि एक तो सुंदर बना हुआ भी बहुत सुंदर है ना, इसके घाट बनाए गए हैं, राजा अकबर और जयपुर के महाराजाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ के विभिन्न मंदिर बने, जैसे राधा मदन मोहन जिसके बारे में प्रभु जी ने बताया, अकबर ने बनवाया और रामदास जी ने बनवाया और राधा गोविंद देव अकबर ने बनवाया, और ये जो कल देखा हमने कुसुम सरोवर सूरजमल राजा ने बनवाया, उसी प्रकार से ये भी जो है वो जयपुर के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है ये पूरा घाट। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वृंदावन आए तो उसको केशी घाट पे नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हमें तो क्यों ले आए प्रभु जी, फिर आप, हमें नहीं जाना चाहिए। कहते कोई व्यक्ति अगर केशी घाट गया तो फिर उसको आंखें बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, चुपचाप वहां बैठना नहीं चाहिए। तो बोलेंगे कि प्रभु जी आपने तो ये भी उल्टा कर दिया, आपने बताया था चुपचाप चले जाने, फिर आपने बिठा के दिया। बोले अगर बैठ भी गए तो वहां पर भगवान की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, और प्रभु जी आपने तो चर्चा भी सुना दी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपने वहाँ केशी घाट गए और वहां पर जाकर आपने यमुना में दर्शन किए, वहां बैठ गए और कृष्ण कथा सुन ली, और गलती से अगर आपने कृष्ण नाम की चर्चा भी सुन ली, तो इसका मतलब फिर आप वापस जब जाएंगे तो आपके जीवन में अब ग्रस्त जीवन नहीं बचेगा, अब आपके जीवन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या हो जाएगा, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रहना चाहता है, है ना, ग्रह मेधी बन के रहना चाहता है, भौतिक इंद्र तृप्ति करना चाहता है, उसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसको कभी केशी घाट नहीं जाना चाहिए। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ की सुंदर समीर सुंदर हवा जब आपके कानों को, आपके शरीर को छुएगी, कृष्ण कथा जब आपके कानों में जाएगी, तो आपको इतना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा कृष्ण से कि आप अपने घर में जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये है केशी घाट की महिमा, और यहाँ पर ये यमुना मंदिर है, यमुना जी की आरती होती है रोज शाम को और सुबह, और जो अधिक मास के महीने में यहाँ पर जल जो है बहुत ऊपर तक यहाँ तक आ जाता है, अभी तो यमुना थोड़ा नीचे उतर गई है और ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि पीछे भी रोका गया है, अधिक मास में आने 2015 में अधिक मास आएगा, उस समय अपने आप ही यमुना का जल का स्रोत बढ़ जाता है, क्योंकि बताते हैं यमुना स्नान करना चाहिए अधिक मास के अंदर। तो ये बहुत सुंदर जगह है, और यहाँ पर इस्कॉन के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बोट फेस्टिवल, राधा श्याम सुंदर के विग्रहों को रख के यहाँ से उस पार ले जाते हैं, बट वो हमेशा नहीं होता है क्योंकि जल नहीं होता, तो फिर मंदिर के प्रांगण में होता है। और ये सारे के सारे जितने ये हम जिससे बैठे हैं, ऐसी जितनी भी बनी हुई है ये गुंबद बने, इन पे भक्त बैठते हैं और कीर्तन होता है बहुत जोर जोर से, तो बहुत सुंदर माहौल होता है, फूलों से पूरा सजाया जाता है इस केशी घाट को। और अभी कुछ गौड़िया भक्त जो है इसको चलाते हैं, ऊपर कमरे भी बने हुए हैं यहाँ पर रहने के लिए, और बहुत ही सुंदर प्लेस है। कभी भी आपको स्नान करना हो, यमुना स्नान, तो और कहीं नहीं करना चाहिए, सिर्फ केशी घाट पे आके करना चाहिए, और भक्तों के संग में आना चाहिए, अलोन डोंट कम अलोन। और इसी के आगे चलते हैं तो फिर चिर घाट आता है। चिर घाट वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर टांगे थे, है ना। तो चीरघाट, तो चीरघाट है, और चीरघाट पे हम कथा सुनते हैं कि भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, तो उसको छोटी छोटी लीलाओं में दो दो मिनट करके हम सुनेंगे ताकि आप लोगों का ज्यादा समय ना जाए। तो चीरघाट पर जो है भगवान कृष्ण जो थे वो बहुत छोटे थे, है ना, जैसे हमने कल बताया था कि छोटा सा बच्चा है उसके मन में कोई इस प्रकार का वो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लस्ट उसके जीवन में है कि वो स्त्रियों के कपड़े चुरा रहा है और चाहता है कि वो सारी स्त्रियां बिना वस्त्र के उसके सामने दर्शन दें, क्योंकि सारी की सारी गोपियां जो हैं उनके मन में क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है कि हम कौन है, आपकी सखी है, आप हमसे शादी कर लो, हमारी शादी तो हुई है भौतिक किसी और से लेकिन हमारे हृदय जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ। देखा जाए तो वैसे सारे के सारे हम लोग कौन है, भगवान की पत्नियां हैं, है ना, इकला प्रभु कृष्ण, एक प्रभु कृष्ण है और सब भृत, सब उनके दास हैं, चाहे देवी देवता हो चाहे मनुष्य जीव हो, हम सब उनके पत्नियां हैं, सिर्फ एक पुरुषोत्तम कृष्ण है, बाकी सब उनकी पत्नियां, इसीलिए भगवान का नाम है जगतपति, है ना, जगतपति मतलब पालन करता इति पति, जो पालन करता है वो पति है, हमारा पालन कौन करता है, भगवान, इसलिए भगवान सबके पति है। और जिस व्यक्ति का जो पति क्यों बोला जाता है, फिर हस्बैंड को पति बोलते हैं क्योंकि वो पत्नी की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, उसको कपड़ा वस्त्र सब कुछ सेटिस्फेक्शन देता है, इसके कारण उनको पति बोला जाता है। कोई बात नहीं, तो उसमें क्या है कि इसलिए उनको पति बोला जाता है। तो जगत पति कौन है, कृष्ण। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि जो आपकी मीराबाई थी वो यहाँ पर आई वृंदावन में और बोली कि मैं यहाँ पर कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, यहाँ रहना चाहती हूँ। तो जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सिक्स गोस्वामी से हम चर्चा की, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है, 500 साल पहले यहाँ पर जो बिल्कुल वन थे, उन्होंने बोला स्त्रियों का आना यहाँ पर वर्जित है। तो मीराबाई ने एक स्टेटमेंट दिया, शिला प्रभुपाद बताते हैं, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कृष्ण के अलावा और भी पुरुष रहते हैं, है ना। तो जब उन्होंने ये बात आकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बताई तो दोनों एकदम अस्टॉनिश्ड, अमेज्ड हो गए कि कौन है वो स्त्री जिसका ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा है, जो ये बात जानती है कि कृष्ण एकला प्रभु कृष्ण है, बाकी वही पुरुषोत्तम है लेकिन बाकी सब जो है स्त्री रूप में है। तो उन्होंने बोला चलो हम उस देवी के दर्शन करते हैं। फिर क्योंकि ये इस प्रश्न में जीवन में हुआ, फिर वो मीराबाई बाद में यहाँ रेसिडेंशियल रही, यहाँ पर रही और स्वामी हरिदास को उन्होंने गुरु अपना बनाया जो निधिवन में है, और वहीं बैठ कर वो भजन करती थी, और वहीं उनके पास में एक झाऊलाल मंदिर है जहाँ पर विग्रह के अंदर वो समा गई थी लास्ट टाइम पे। तो ये समझने की बात है कि कृष्ण ही भगवान जो है पूर्ण पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। इसी प्रकार से सारी गोपियां चाहती थी कि हम कृष्ण को पति रूप में, तो पत्नी क्या है, उसका सब कुछ अपने पति के लिए है। तो भगवान कृष्ण का इनकी मैं इच्छा कैसे पूरी करूं, ये तो ऑलरेडी मैरिड है, अगर मैं भौतिक दृष्टि से कुछ करता हूं तो फिर क्या होगा, ये इन लोगों की बदनामी होगी। तो भगवान ने क्या किया, जानबूझकर छोटी उम्र में उनके सारे वस्त्र चुरा लिए और कहा कि मैं तभी वस्त्र दूंगा जब तुम सारे बिना वस्त्रों के निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आओगे। तो पत्नी एक है जो अपने पति के सामने निर्वस्त्र हो सकती है, अन्यथा किसी के सामने नहीं। तो जब ये फीलिंग उनकी थी, तो एक एक फीलिंग, कहने का मतलब ये एक एक डिजायर जो भी आपकी है भगवान उसको पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें। हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आए तो उन ऑब्स्टेकल से लगेगा भगवान तो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, लेकिन आप नहीं जानते कि भगवान ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। तो इसी प्रकार से जब गोपियां बाहर निकली और अपने वस्त्र मांगे तो गोपियां भी जान रही थी कि कृष्ण जो है हमारे को पति पत्नी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और फिर सबके वस्त्र उन्होंने दे दिए। तो आज भी जब हम अभी वापिस जाएंगे तो आप देख सकते हैं वो पेड़ कदम का वृक्ष आज भी वहां पर है, जिसपे अभी भी लोग आकर कपड़े बांधते हैं, क्योंकि भगवान हमारी भी हमें भी पत्नी रूप में स्वीकार कर लें, है ना। तो जो भी चाहते हैं कि हमें पत्नी रूप में स्वीकार करें वो लोग आकर वहाँ वस्त्र बांधते हैं, है ना। और फिर उसके आगे चलते हैं तो कालिया देह आता है, जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था, कालिया नाग को मारा था। तो यहाँ पर यमुना जो है उसमें पूरा एक सांप रहता था जो कि पूरा जहरीला था, और क्या करते थे कि जितने भी ग्वाल बाल यहाँ खेलने आते थे, गाय आती थी, सब उनका जहर पीकर जो है मर रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने क्या किया, जंप कर दिया यमुना नदी में, और सारी यशोदा माई और सब घबरा गए कृष्ण को क्या होगा, वो समझ नहीं रहे कि कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर भगवान ने उस कालिया नाग को बहुत मारा, और मारने के बाद में उसके फन पर नृत्य किया, जो आपने देखा हुआ है, लीला सुनी हुई है, नृत्य किया। तो ये जो कालिया नाग है ये भी देखा जाए तो जो कौन है, हमारे जीवन में ईगो हमारी, है ना, हमारा प्राइड, और उस प्राइड को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, अहंकार को क्या करते हैं, उसको अपने पैरों से कुचल देते हैं। लेकिन किसी देवी देवता की शरण में जाने से अच्छा है कि हम कृष्ण की शरण में जाएं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब दबाते भी हैं तो क्या करते हैं, जब कालिया नाग को ऊपर डांस करते हैं तो कालिया नाग से कहते हैं भागो यहाँ से यमुना नदी को छोड़ के, तो बोलते हैं मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि मैं आकर छुपा इसीलिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि जो आपके वो है ना गरुण जिसपे आप बैठते हो, उन्होंने बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा, और मैं सांप हूं और वो गरुण है तो हमारा तो दुश्मन ही है, तो वो मुझे खाने वाले थे, तो मैं भाग कर कहां आ गया यमुना में, क्योंकि यहां पर वो मुझे नहीं खाएंगे क्योंकि ये तो आपकी धरती है। तो भगवान बोले कि ठीक है, अब तुम डरो मत, क्योंकि मेरे तुम्हारे सर को कुचलने से मेरे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सिर पे छप गए, अब तुम कहीं भी जाओगे तो गरुण तुमको कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हमारी ईगो भी है, अगर हमारी डिजायर भी है, तो हमें कृष्ण की शरण में जाने का क्या फायदा है कि भगवान के चिन्ह सदा हमारे सिर पे विराजमान होंगे। तो अगर हम हमारे साथ कुछ भी होगा तो हमारे अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये शरण भगवान की लेने का फायदा होता है। तो और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीला है, इमली ताला एक मंदिर है, राधा मदन मोहन है, और इस परिक्रमा मार्ग में बताते हैं 5000 मंदिर है, 5000 temples, है ना। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम उन टेम्पल्स को विजिट करें, इम्पॉर्टेंट ये है जैसे पहले बताया प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ कॉन्शियसनेस, सो योर कॉन्शियसनेस शुड चेंज, और वो तभी चेंज होगी जब आप हमारे प्रभु जी जैसे हैं दयालु गोविंद प्रभु, इतने शुद्ध भक्त हैं, ऐसे सुंदर सुंदर भक्तों का संग करेंगे, इनसे लीला श्रवण करेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। अन्यथा हम अपने आप, हो सकता है बुक्स खरीद लें अपने घर में पढ़ें, वो बदलाव नहीं आएगा। क्यों? कि जब हम बोलते हैं तो लोग उसको कानों से सुनते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति रियलाइज करके बोलता है, जैसे प्रभु जी बोलते हैं, जब व्यक्ति रियलाइज करके बोलेगा तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को भी रियलाइजेशन होगा। सो दिस हियरिंग इज नॉट ओनली हियरिंग, दिस इज रियलाइजेशन, है ना। तो जब रियलाइजेशन, आपने बहुत सारे सीडीज पहले भी सुनी होंगी, टीवी में भी आप कथा सुनेंगे, बट आपको कभी रियलाइज नहीं होगा। और रियलाइजेशन तभी आता है जब वो रियलाइजेशन के साथ बोला गया हो, रियलाइजेशन के साथ लिखा गया हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता ने विश्व को बदला। क्यों? क्योंकि वो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये तात्पर्य नहीं है, ये भावार्थ है। भगवान कृष्ण का क्या भाव है वो मैंने लिखा है, ये शब्दार्थ नहीं है कि ऐसे ऐसे बोला बिल्कुल एज इट इज उन्होंने लिख दिया। क्या भाव है भगवान का, भगवान उसके पीछे क्या समझाना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही तब जब भक्त उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करता है तब वो दूसरों को समझा सकता है, और जब वो समझाता है तो हमें भी फिर रियलाइजेशन आते हैं। तो हम थैंक यू करेंगे इस ग्रेस दयालु गोविंद प्रभु का, उन्होंने अपना इतना सुंदर एसोसिएशन हमें दिया है, इतना सुंदर कीर्तन और भक्तों का संग मिला है, और आप लोगों का थैंक यू क्योंकि आप लोग आए, आप लोगों ने इतना सुंदर हमको एसोसिएशन दिया है। तो अब हम चलेंगे और फिर आप लोग अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, और फिर 4 बजे प्रसादम हॉल, और उसके बाद वी विल गो बैक टू दिल्ली। सत्वगुण में बोलते हैं कि जैसे हम हमारे अंदर डिवोशनल लाइफ बहुत हमारी बढ़ जाती है ना, तो हम सोचते हैं जैसे मैं हूँ, मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगेगा आई एम बेटर देन हिम, ओ हाउ कैन ही स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये सत्वगुण में क्या होता है, सत्वगुण में तो है कथा सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, बट ये भाव हमारे अंदर आता है तो वो क्या है, मेरा गला सत्वगुण से पकड़ा हुआ है पूरा, तो सत्वगुण में रह के भी भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति कब है, जब ये तीनों बेड़ियां खुलेंगी, तब जीवात्मा को कृष्ण शुद्ध सत्व, जो प्रभु जी कल बता रहे थे, शुद्ध सत्व में तभी व्यक्ति जाएगा जब तीनों प्रकार की बेड़ियां। तो भक्ति में आने के बाद भी बहुत मुश्किल है। एक दिन हम गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे, वहां लिखा था भक्ति में भी माया है। अब आदमी बोले माया छोड़ के भक्ति में, भक्ति में भी माया तो हम कहां जाएंगे। तो भक्ति में माया वही है कि डूबता वो है जिसको तैरना आता है, वो व्यक्ति कभी नहीं डूबेगा जिसको तैरना नहीं आता। वो क्या हुआ, गिरेगा तो साइड से कोई ना कोई बचा लेगा, लेकिन जो स्विमर्स हैं वो बीच में चले जाते हैं और वर्लपूल होता है ना उसमें डूब जाते हैं। ज्यादातर हमने देखा है लाइफ में जितने लोगों की डेथ हुई है वही लोग हैं जो स्विमर्स थे, इसीलिए स्विमिंग नहीं सीखे तो ज्यादा अच्छा है। जो स्विमर्स हैं वो डूब जाते हैं क्योंकि उनको क्या होता है, ईगो होती है, अहंकार, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, आई कैन स्विम, आई कैन पास ऑन। और ये अहंकारी व्यक्ति, भक्त जो होता है ना, मेरे पास ज्ञान है मैं समुद्र पार कर जाऊंगा, लेकिन समुद्र ज्ञान से पार नहीं होता, कैसे होता है, भक्तों की कृपा से, है ना। जब भक्तों की कृपा मिलेगी तो, प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी तो पार होगा, कभी अन्यथा पार नहीं हो सकता हमारे से। तो इसके लिए भक्तों की कृपा लें, सत्वगुण की रस्सी से भी छूटे, अहंकार से दूर रहें और फॉलो करें हर एक चीज को। हरे कृष्ण।
सुभद्रा जी के बारे में यही है कि सुभद्रा जो राजा थे उनकी बेटी थी सुभद्रा। कृष्ण से ये संबंध है कि जो भगवान के जगन्नाथ के धाम है वहां पे वो जगन्नाथ के ही